जयधवला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 7
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानम् नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं अणुभागभागमेत्तो विजर्थदोषस्तसंभवो नस्ति कम्पणमियजिनणाहम्
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाउर तथा शून्य सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। नवी पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार अभी चल रहा है संक्रमण को देखते हुए भी हम पृष्ठ संख्या 38 को पर आ गए 38 उत्तर प्रकृति विभक्ति में जो संक्रमण देख रहे हैं उसमें हमने अभी जघन्य का जो स्वामी है जघन्य अनुभाग संक्रमण का स्वामी कौन है उसको हमने देखा था। मिथ्या को और आठ कषाय का तो हमने सूक्ष्म निबोध लब्धि पर्याप्त करके देखा था हत समुत्पत्ति वाले के। उसके बाद सम्यक्त्व का कहा होता है एक समय प्लस आवली जब है बाकी है तब उसके अंतिम वो आवली प्लस एक समय वाले जीव के होता है। सम्यक मिथ्यात्व का अंतिम कांडक में होता है क्षपणा में। अनंतानुबंधी का संयोजना होने पर नया बंध होता है वो आवली के पश्चात उसका जघन्य संक्रमण होता है। अब संज्वलन 4 और पुरुषवेद की बात है ना तो वहाँ किसके होता है तो क्रोध संज्वलन का जब उसके अंतिम बंध किया है उसके जब अंतिम फाली संक्रमित होती है तब जब मान के उदय काल में मान वेदक काल में
दो अवली माइनस
दो समय कम दो अवली बीत जाते हैं तो उस समय उसका होता है। ऐसे मान माया का लेना है लोक संज्वलन का एक समय अधिक अवली बाकी रहती है सूक्ष्म सांप्राय क्षपक की तब होता है। त्रिवेद का नपुसक वेद का और छनो कोशाय का अपने अपने क्षपणा का जो अंतिम
अनुभाग
कांड के थ्रू पूरे अंतर्मुहूर्त तक उसका जघन्य रहता है। अब आदेश से हम देख रहे थे उसका विशेषार्थ अब देखेंगे। नरक गति आदि गति संबंधी सब अवांतर मार्गणाओं में अवांतर ने उसके जो भेद है उसमें जिन प्रकृतियों का जघन्य स्वामित्व अविभाग विभक्ति के समान जानने की सूचना की है उसका इतना ही तात्पर्य है कि जिस प्रकार अनुभाग विभक्ति अनुयोग द्वार में जघन्य अनुभाग सत्कर्म के स्वामित्व का निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ जघन्य अनुभाग संक्रम की अपेक्षा स्वामित्व का निर्देश कर लेना चाहिए। हमने मूल में देखा था कि पहली पृथ्वी में जो कैसा होता है तो असंगी से आया हुआ जीव मिथ्यात्व वगैरह अन्य प्रकृतियों में और सम्यक्त्व में कृत कृत्य वेदक वाले को लिया अनंतानुबंधी का तो सब जगह तो संयोजना वाली बात होती है संयोजना करने पर दूसरी से सातवीं पृथ्वियों में वो समय की वाली बात नहीं घटित होती है तो उसका जघन्य होगा ही नहीं समय प्रकृति का जघन्य होगा ही नहीं और बाकी असंगी वहाँ नहीं आते हैं तो वहाँ कैसे लेना है तो वहाँ पर जो समय दृष्टि विसंयोजना कर लेता है उसके बाद उसका जितना है वो जघन्य रहता है क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा कांडकघात नहीं होते उसके काल में जो कांडकघात हुए तो वहाँ उसका जघन्य पाया जाता है। प्रथमोक्षम में होगा और दोबारा और अनंतानुबंधी में होगा तो जघन्य किसके होगा जिसने दोनों कर लिए है। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व में भी अनुभाग कांडकघात हुए है और विसंयोजना भी दोबारा हुए है तो वहाँ उसका जघन्य होगा। हाँ वो कभी भी करे
तो फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ कभी भी करे उसके तो कांडक तो हो गए ही। हाँ, किसी ने बाद में भी किया तो उसका जघन्य होगा। अभी हम आगे पढ़ रहे थे, तीन लाइन पढ़ी अभी हम, कर लेना चाहिए, चार लाइन हो गए विशेषार्थ की। मात्र जिन प्रकृतियों की अपेक्षा जघन्य स्वामित्व में अनुभाग विभक्ति से अंतर है, उनके जघन्य स्वामित्व का अलग से निर्देश किया है। उदाहरणार्थ, सामान्य से नारकियों में सम्यक्त्व के अनुभाग सत्कर्म का जघन्य स्वामित्व दर्शनमुखी क्षपणा के अंतिम समय में स्थित जीव के और अनंतानुबंधी चतुष्क के अनुभाग सत्कर्म का जघन्य स्वामित्व प्रथम समय में संयुक्त हुए तत्प्रायोग्य विशुद्ध जीव के बतलाया है। यहाँ क्या डिफरेंस होगा?
दूसरी पृथ्वी में तो
नहीं, नहीं नहीं, दूसरी पृथ्वी की बात नहीं चली। यहाँ तो एक अवली सम्यक्त्व का अनुभाग विभक्ति ने सत्व जघन्य कब होता है? तो अंतिम समय में होता है। और यहाँ संक्रमण की बात चल रही है, हमने पहले सत्य यहाँ बात विभक्ति की यानी सत्व की बात की। सत्ता अपेक्षा अनुभाग मिनिमम कहाँ है?
एक अवली प्लस
तो क्षपणा का अंतिम समय, कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय, परंतु यहाँ पर संक्रमण
एक अवली प्लस
एक अवली और एक समय जब था बाकी तब उसका जघन्य है संक्रमण की अपेक्षा, क्योंकि बाद में संक्रमण रुक जाता है। अनंतानुबंधी की संयोजना में जघन्य होता है पहले समय में, अनुभाग का जघन्य पना पाया जाता है, परंतु उसका संक्रमण कब होता है? कावली के पश्चात होता है। इसलिए अनुभाग विभक्ति के कथन में और अनुभाग संक्रमण के कथन में ये डिफरेंस है। ख्याल में ये बात? यहाँ फिर बताने, किंतु इन अवस्थाओं में यहाँ पर सम्यक्त और अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामित्व नहीं बन सकता, क्योंकि वहां तो सम्यक्त्व के लिए अंतिम समय लिया, अनंतानुबंधी के लिए पहला समय लिया, क्योंकि न तो दर्शन मुनि की क्षपणा के अंतिम समय में सम्यक्त्व के अनुभाग का संक्रम संभव है, संक्रम की बात चल रही है, और न ही संयुक्त होने के प्रथम समय में अनुभाग अनंतानुबंधी चतुष्क के अनुभाग का संक्रम संभव है। तो कब संभव है? तो सम्यक्त्व के लिए आवली पहले और इसके लिए आवली पश्चात। इसलिए यहाँ पर नारकियों में इन प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग संक्रम के स्वामित्व को ओघ के समान जानने की अलग से सूचना की। ओघ के ने ओघ में जैसा संक्रमण का स्वरूप बताया वैसा खुलासा जघन्य संक्रम प्रकरण के ओघ को देखकर कर लेना चाहिए, वो जो अभी हमने अभी देखा है। इसी प्रकार अन्यत्र जहाँ जो विशेषता कही गई है उसका विचार कर लेना चाहिए। यहाँ पर योनिनी तिरियंचो तथा भवनवासी और व्यंतर देवों में सम्यक्त के जघन्य अनुभाग संक्रम का निषेध किया है, सो उसका वह तात्पर्य है इन मार्गणाओं में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता। इसलिए वहाँ सम्यक्त्व का और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग संक्रम नहीं बनता, परंतु वहाँ मिथ्यात्व का जघन्य बनेगा कि नहीं बनेगा? तिरियंच योनिनी में और भवनवासी व्यंतरों में
नहीं हो कि नहीं बनेगा?
मार्गणा की अपेक्षा
हाँ हो, नहीं भवनवासी और व्यंतर में तो नहीं होगा,
असंगी से आया हुआ
वो मार्गणा की अपेक्षा नहीं बनेगा।
मार्गणा हम पूछ रहे हैं, हमने वो कहा ही नहीं। और तिरियंचो में जघन्य कैसे होगा?
एक इंद्रिय से आया हुआ,
एक इंद्रिय से आया। यह विशेषता द्वितीय आदि पृथ्वियों में और देवी ज्योतिषी देवों में भी जाननी चाहिए, क्योंकि वहां भी कृतकृत्य वेदक नहीं उत्पन्न होते। शेष कथन स्पष्ट ही है। तो यहाँ एक जघन्य का प्रकरण समाप्त हुआ, यानी उत्कृष्ट का स्वामित्व और जघन्य का स्वामित्व देख लिया हमने। एय जीवेण कालो, एक जीव की अपेक्षा काल, अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्तस्य उत्कृष्टानुभाग संक्रामो केवचिरं कालादो होदि, मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रामक का कितना काल है? यानी लगातार उत्कृष्ट 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 करता रहे तो कितने काल तक करेगा? उत्कृष्ट कब करेगा? जब उत्कृष्ट का बंध होता है, आवली काल बीत जाता है तब उसका उत्कृष्ट का संक्रमण यानी अपकर्षण आदि चालू हो जाता है। संक्रमण तो अपकर्षण को कहेंगे यहाँ पर, तो क्या एक समय में वो अनुत्कृष्ट हो जाएगा?
नहीं होगा।
स्थिति में तो एक समय में वो गलने से कम हो जाता है, अनुभाग में तो ऐसा नहीं होगा, अंतर्मूर्त लगेगा उसको। तो यहाँ उसकी बात बताएंगे, जहन्न उत्कस्य न अंतोमूर्तम, उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके एक आवली के बाद संक्रम करता हुआ यदि अतिशीघ्र अनुभाग कांडक का घात करता है तो भी उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम का जघन्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। यानी ये कांडक तत्काल चालू भी हो जाता है आवली के पश्चात अनुभाग का घटना, तथा इससे संख्यात गुणा उत्कृष्ट काल होता है, यानी वो भी अंतर्मूर्त है फिर भी उसको उत्कृष्ट काल कहेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके कांडक घात के बिना यदि बहुत काल तक रहता है तो भी, कांडक घात नहीं होता तो भी अंतर्मूर्त से अधिक काल तक रहना संभव नहीं है। एक अतिशीघ्र तो कांडक द्वारा नष्ट होगा, और कांडक नहीं भी हुआ तो क्या होगा, अंतर्मूर्त में वो कम होगा ही।
वो कैसे कम होगा?
अभी नया बंध कम हो रहा है और उसका तो घटता ही चला जाता है, ऊपर के जो स्पर्धक है उसमें से वो अपकर्षण होते होते वो अनुत्कृष्ट बन ही जाएगा एक अंतर्मूर्त, परंतु कांडक की अपेक्षा वो अंतर्मूर्त बड़ा है। अनुकस्सानुभाग संकामो केवचिरम कालादोहोदी, इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का कितना काल है, यह सूत्र है। इन्हें क्या उत्कृष्ट करता हुआ अनुत्कृष्ट हुआ और एक समय में वापस उत्कृष्ट कर सकता है?
कर सकता है
तो जघन्य काल अंतर्मूर्त तो लगेगा। जैसे हमने बंद की बात देखी थी, उत्कृष्ट का बंद करके कोई अनुत्कृष्ट बंद करने लगा तो क्या एक समय के अंतर से फिर उत्कृष्ट नहीं करता तो अंतर्मूर्त तो चला जाएगा। जघन्य काल अंतर्मूर्त है क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम से कांडक घात के द्वारा अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम को प्राप्त होकर जो फिर भी अतिशीघ्र काल के द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम को प्राप्त होता है उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का जघन्य काल अंतर्मूर्त पाया जाता है। यानी मिनिमम इतना काल बीच में जाएगा ही, क्योंकि पहले उत्कृष्ट किया था कांडघात के द्वारा अनुत्कृष्ट हुआ फिर उत्कृष्ट का बंद करके आवली काल बीत जाएगी तब उसका उत्कृष्ट का संक्रमण दोबारा होगा।
उत्कृष्ट का संक्रामक जो जीव है उसका कांडक होगा तो ही उसका अनुत्कृष्ट होगा ना।
अभी क्या बताया, देखो कांडक होता तो शीघ्र होगा, कांडक नहीं भी होगा तो भी,
तो कांडक के बिना अनुभाग का कम संक्रमण हो सकता है?
बिल्कुल होता है ना, तभी तो बताया। देखो निकाल पीछे का पेज 105 नंबर का पॉइंट अभी अभी हमने पढ़ा था, वहां क्या लिखा है कि उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके एक आवली के बाद संक्रमण शुरू हुआ उत्कृष्ट का, और यदि अतिशीघ्र अनुभाग कांडक का घात करता है तो भी जघन्य काल अंतर्मूर्त लगता है, और इससे संख्यात गुना उत्कृष्ट काल है क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके क्या लिखा आगे, कांडक घात के बिना यदि बहुत काल लगता रहता है तो भी अंतर्मूर्त से अधिक काल नहीं है। इसका अर्थ क्या है, अनुभाग कांडक के घात के बिना ही वो कम हुआ?
जो सम्यक और सम्यक दिखा तो हमने क्रिया विशेष की अपेक्षा जो देखा था कि उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट नहीं होता है, जैसे या नहीं
तो सम्यक में मिथ्यात्व जो अलग प्रकृतियां हैं, जाति विशेष के कारण उसमें कुछ अलग रूल बनते हैं, यहाँ ऐसा नहीं, हर एक प्रकृति की अपनी जाति अलग अलग है, तो यहाँ कांडक घात होगा तो ही अनुत्कृष्ट होगा ऐसा नहीं, बिना उसके भी अनुत्कृष्ट हो जाता है। नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है ना, सम्यक दृष्टि के लिए वो क्रिया होती है, और वो भी कोई भी क्रिया हो अनंतानुबंधी के विषय योजना की तो भी सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग बिल्कुल घटता नहीं है, उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट भी नहीं होता,
नहीं होता।
वो अनुत्कृष्ट जब होगा जब क्षपणा में 8 वर्ष की स्थिति के बाद जो कांडक घात शुरू हो जाएंगे तब वो उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट होगा और प्रति कांडक घटता घटता फिर जगन्य होगा लास्ट कांडक में, लास्ट कांडक के भी आगे एक एक समय में। अभी हम अनुत्कृष्ट का जघन्य काल कितना है?
अंतर्मुख।
अब लंबे काल तक अनुत्कृष्ट ही रहे, उत्कृष्ट होगा ही नहीं,
अनंत काल।
तो उत्कृष्ट बंधन नहीं किया, एक इंद्रिय में विकलेंद्रिय में चला गया, तो अनंत काल जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल होगा वही बता रहे। उक्कस्य न अनंत कालम असंख्येज्जा पुद्गल परिहट्टा। उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम से कांडक घातवश अनुत्कृष्ट अनुभाग को प्राप्त होकर शीघ्र कराए ना उसको, क्योंकि अनुत्कृष्ट का काल लंबा ना है। उत्कृष्ट अनुभाग बंध से रहित एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक परिभ्रमण करने वाले जीव के उतने काल तक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम में अवस्थान देखा जाता है। मिथ्यात्व की बात चल रही है यहाँ पर, अन्य की बात अभी बताएंगे। इसी प्रकार 16 कषाय, अरे ऊपर का रह गया, हाँ, एवं 16 कषाय 9 नौकषायाणम। इसी प्रकार 16 कषाय और 9 नौकषायों का काल जानना चाहिए, यानी उत्कृष्ट का अंतर्मूर्त है, अनुत्कृष्ट का भी अंतर्मूर्त तो जगन्य और उत्कृष्ट अनंत काल। यह अर्पणा सूत्र सुगम है। सम्मत्त सम्मामिच्छत्तानं उक्कस्य अनुभाग संकामो केवचिरं कालादो होदि। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का कितना काल है यह सूत्र सुगम है। जघन्य न अंतर्मूर्त, जघन्य काल अंतर्मूर्त है।
सुगम
ऐसा ही है, हमें लगता है वही पढ़ रहे हैं और पढ़ भी लेते हैं शुद्ध, और वहाँ अशुद्धि पड़ी है। तो अंतर्मूर्त काल कैसे घटित होगा? हाँ तोशी साहब, नहीं मालूम, मंदाबेन वहाँ पढ़ के नहीं बताना है।
बता दो
कि पढ़ लिया
प्रथम उपशम प्राप्त किया और अंतर्मूर्त में छपड़ा कर। हाँ,
प्रथम उपशम क्यों प्राप्त किया? वेदक प्राप्त करता तो क्या बिगड़ता? हाँ सत्ता नहीं थी, जब से सत्ता है तो उत्कृष्ट ही रहता है। कब तक? जब तक छपड़ा नहीं होती या उद्वेलना के द्वारा नष्ट नहीं होता तब तक तो उत्कृष्ट ही अनुभाग रहता है। इसलिए उसने सत्ता प्राप्त किए ने औपशमिक सम्यक प्राप्त किया और उसी काल में उसने उसके शीघ्र अंतर्मूर्त में क्षपणा कर दी। उद्वेलना के अंतिम निषेक तक उत्कृष्ट रहता है, परंतु यहाँ संक्रम की बात है इसलिए एक आवली पहले ले।
हाँ
अंतिम निषेक, अंतिम उसके निषेक तक एक भी निषेक बाकी है तो उसका अनुभाग उत्कृष्ट रहता है। अनुत्कृष्ट कब होगा बोलो?
पहले सपना के पहले कांडक में अनुत्कृष्ट हो जाएगा और पीछे मिनिमम लास्ट कांडक में।
हाँ, क्योंकि जब 8 वर्ष की स्थिति रहती है ना, जब सारा समय मिथ्या तो समय प्रकृति रूप टर्न हो जाता है, तो समय प्रकृति की स्थिति 8 वर्ष की है, वहाँ उसका अनुभाग कांडक शुरू हो जाएगा और वहाँ जब उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो जाएगा, तब अंतिम फाली जब फिरेगी तब, और वहाँ प्रति कांडक अनुत्कृष्ट होता, अभी अंतिम कांडक के बाद भी प्रति समय उसका अनुभाग अनंत गुना घटता घटता अंतिम समय तक घटेगा। तो हमें संक्रम की बात कर रहे हैं इसलिए आवली प्लस एक समय को लेना, तब उसका जघन्य अनुभाग संक्रमण होगा। अभी यहाँ पढ़ेंगे हम।
हमने जो एक ही परिणाम के वर्ष अलग अलग वेरियस आबादा कांडक काल देखा था, आबादा कांडक काल एक ही परिणाम के वर्ष अलग अलग स्थितियों को बांधता है, वहाँ पे अनुभाग उत्कृष्ट ही होगा
देखो आपका प्रश्न ऐसा है ना कि हमने ऐसा देखा है एक ही परिणामवश अलग अलग स्थितियों को बांधता है, स्थितियां अलग अलग, परंतु वो स्थिति जो है उसकी रेंज होगी, अलग अलग स्थिति भले बांधता है
तो वहाँ पे
परंतु जो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण अलग अलग स्थितियों को बांध सकता है एक एक समय के डिफरेंस में, और उसके लिए आबादा समान होगी उसकी बात नहीं है, ये तो स्थिति के भेद हुए, परंतु एक एक समय वाले स्थिति के भेद के साथ अनुभागों में असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशन होगी, एक एक समय की स्थिति के साथ, स्थिति एक एक समय से बढ़ती है, एक विशिष्ट स्थिति के साथ जैसे हमने देखा था एक विशिष्ट परिणाम के साथ,
हाँ, वो जो हमने दो ट्रायंगल देखा था
असंख्यात है, वैसे एक एक स्थिति भेद के साथ
असंख्यात
अनुभाग का बंध जो है उसको करने वाले परिणामों में बताना, यहाँ वो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग वेरिएशन परिणामों, एक ही परिणाम में स्थिति की अपेक्षा भेद अलग, उसको कहेंगे स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम एक एक विशिष्ट स्थिति बंधने के लिए कारणभूत परिणाम असंख्यात लोग, परिणामों की बात है, स्थिति के भेद तो अभी हम छोड़ दिए, अभी हम परिणामों की बात करें, तो जैसे एक समय वाली स्थिति बंधी तो कितने अलग अलग परिणामों से वही स्थिति बन सकती है उसकी बात,
असंख्यात लोग को,
असंख्यात लोग, अभी एक एक जो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है परिणाम उसके साथ अनुभाग बंध अध्यवसाय कितने हो सकते हैं, तो वो असंख्यात लोग
बने, दो ट्रायंगल देखिए,
अनंत ने परिणाम की बात है ना, यहाँ अनुभागों के वेरिएशन अनंत हो गए, अनुभाग बंध के होने के परिणाम जीव के परिणाम, अनुभाग में तो वेरिएशन अनंतों का होगा, अलग अलग अनुभाग बंद
हो, उत्कृष्ट,
हाँ उसके जो कोई वेरिएशन हो,
सो उत्कृष्ट स्थिति के साथ ही उत्कृष्ट अनुभाग होगा कि ऐसा नॉट नेसेसरी,
उसमें वेरिएशन हो गया ना उसके,
नहीं उत्कृष्ट स्थिति के साथ ही
उत्कृष्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता,
अच्छा नहीं भी हो सकता, हाँ क्योंकि वहाँ पे असंख्यात लोग प्रमाण,
अलग अलग उसके अलग अलग परिणाम है ना, उत्कृष्ट स्थिति के साथ अनुभाग में वेरिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो यहाँ ये जो जघन्य काल किसका, उत्कृष्ट संक्रमण का, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संक्रमण चलता रहे उसका जघन्य काल कितना है, तो अंतर्मुहूर्त है, यथा जिसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है ऐसा एक मिथ्या दृष्टि जीव, ये सादि होगा कि अनादि होगा,
दोनों
उन्होंने बताया, इसलिए 26 की सत्ता वाला चाहिए, प्रथम ऑप्शन सम्यक को प्राप्त कर तथा सम्यक दृष्टि होने के प्रथम समय में मिथ्यात्व के अनुभाग को सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व रूप से परिणमा कर और दूसरे समय से उनके उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होकर, पहले समय में तो स्थिति तो उसकी सत्ता में तो हो गया, वो अनुभाग
संक्रामक दूसरे,
परंतु संक्रामक दूसरे समय से है, तथा अतिशीघ्र दर्शन मुनि की क्षपणा का प्रस्थापक होकर, प्रस्थापक यानी वो बिगिनर, उसने शुरू कर दिया, और प्रथम अनुभाग कांडक का घात करके अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक हो गया, जब पहला अनुभाग कांडक घात होगा तब उसका अनुत्कृष्ट हो गया, प्रथम अनुभाग कांडक का घात करके अंतिम समय, अंतिम फाली बिना उसका अनुभाग घटेगा नहीं, इस प्रकार सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त हो गया, उक्कसेन वे छावट्टी सागरोपमाणी सादिरे यानी तथा उत्कृष्ट काल साधिक दो छासर सागर प्रमाण है, ये साधिक दो छासर सागर कैसे, कि उसकी सत्ता रहनी चाहिए समय समय मिथ्यात्व की, नष्ट होने के पहले पहले फिर समय को प्राप्त कराना है, ख्याल में आती ना, तो पहले बार समय को प्राप्त किया फिर मिथ्यात्व में गया फिर उद्वेलना करता रहा पल्ले के असंख्यात भाग नष्ट होने के पहले फिर समय को प्राप्त किया फिर छासर सागर तक रहा फिर मिथ्यात्व में आया वहां एक बार फिर छासर सागर फिर मिथ्यात्व में पल्ले का असंख्य तो तीन बार पल्ले का असंख्यात भाग होगा और दो छासर सागर होगा क्योंकि उसकी सत्ता बनी रही तो जब तक सत्ता है तो उसका उत्कृष्ट है उसने बाद में उद्वेल ना कर दे। शंका, यह काल कैसे प्राप्त होता है? यहाँ लिखा ना उत्कृष्ट काल साधिक दो शास्त्र सागर, साधिक में तीन बार वो पल्ले का असंख्या तो भाग ले लेना। समाधान, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता से रहित एक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त को प्राप्त करके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक हो गया। अनंतर क्रम से मिथ्यात्व को प्राप्त कर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करता हुआ यथाविधि सम्यक्त को प्राप्त हुआ। यथाविधि ने उसका संक्रमण रूप नहीं गया था और उसने सम्यक तो प्राप्त किया। यथाविद्या ने फिर उसको औक्षमिक प्राप्त करा के वेदक भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने वेदक योग्य में बनाएंगे तो जल्दी करेगा,
लंबा काल देखना है तो
लंबा काल लेना है तो नीचे ला सकते हैं उसको। और प्रथम छासर सागर काल तक सम्यक्त के साथ परिभ्रमण करके पुनः मिथ्यात्व में जाकर, जब अंतर्मूर्त शेष रहता है तब मिथ्यात्व में जाएगा वो। पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक उक्त दोनों कर्मों की उद्वेलना करने लगा, पुनः पहले के समान सम्यक्त को प्राप्त करके और दूसरी बार छासर सागर काल तक उसके साथ भ्रमण करके उसके अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। वहां सबसे उत्कृष्ट उद्वेलना काल के द्वारा, क्योंकि हमको ये काल बढ़ाना है इसलिए उत्कृष्ट उद्वेलना काल लिया, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करके उनका असंक्रामक हो गया। भले आवलिकार शेष रहे तो भी वो असंक्रामक कहलाएगा, तब से उसको हम कहेंगे वो तो काल उसका समाप्त हुआ।
यह तो आवलिकाल कांडक कांडक प्रमाण जाएगा ना, आवलिकाल तो रहेगा ही नहीं बाकी,
अंतिम कांडक जाने के बाद आवली प्रमाण शेष रहे स्थिति
तो
एक समय कम आवली इतने हो गए और वो मिथ्यात्व रूप से उदय में आके नष्ट हो गए, परंतु संक्रमण तो रुक गया उसका, इसलिए उसको कहा असंक्रामक हो गया। इस प्रकार सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का तीन बार पल्ले के असंख्यातवे भाग से अधिक दो छासर सागर काल प्रमाण उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। ये समझ में आई बात प्रेरणावे? अनुपकस्य अनुभाग संक्रामो केवचिरम कालादहोदि, उनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। कैसे होगा ये?
ये सपड़ा में पहला
अनुत्कृष्ट का कैसा लेना काल? बोल दो।
सप्ताह में पहला कांडक शुरू किया, पहले कांडक के पश्चात अनुत्कृष्ट हो गया।
हाँ।
और लास्ट कांड नहीं, एक आवली प्लस एक समय तक अनुत्कृष्ट रहा।
हाँ, जो जघन्य वो भी अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा, परंतु अनुत्कृष्ट को लिमिट है ना, क्योंकि क्षपणा में ही अनुत्कृष्ट होता है। अब एक बार वो क्षपणा में अनुत्कृष्ट कब से शुरू हुआ? अभी जो उसका पहले कांडक से शुरू हुआ, तो अभी तो उसकी लिमिटेड है ना, अंतर्मूर्त में तो क्षपणा पूरी होती है, यानी वो अनुत्कृष्ट कितने काल तक रहेगा? जो क्षपणा का काल है उतने काल तक रहेगा। क्षपणा के काल में भी वो जो हम आवली प्लस एक समय तक लेते हैं उसको, तो वहां तक का जो काल होगा उसको अंतर्मूर्त में ही आएगा उसको। तो कहते हैं अनुपकस्य अनुभाग संकाम केवचिरम कालादो होती, तो उसका कितना काल है यह सूत्र सुगम है। जहन्न उपकस्य न अंतो मुहूर्तम, जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। दर्शन मोह की क्षपणा में प्रथम अनुभाग कांडक का घात करके तदनंतर समय में, प्रथम अनुभाग कांडक है पहला अनुभाग कांडक होता है, अंतिम फाली के बाद अनुत्कृष्ट हो जाता है, वहां से शुरू हुआ अनुत्कृष्ट को। तदनंतर समय में जो अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक हो गया है उसके दूसरे अनुभाग कांडक से लेकर पहले के पश्चात अनुत्कृष्ट शुरू हुआ। पहले के अंतिम फाली तक उत्कृष्ट था, वो फाली नष्ट हुई, अनुभाग कांडक समाप्त हुआ, अभी दूसरा शुरू हुआ तत्काल, तो उसका अनुत्कृष्ट होगा। तो वहां से लेकर अंतिम अनुभाग कांडक की अंतिम फाली तक तो सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम कराने का काल ग्रहण करना चाहिए। सम्यक मिथ्यात्व में तो अंतिम फाली तक लेना है, और सम्यक प्रकृति में वो एक समय प्लस आवली तक लेना उसका। तथा इसी प्रकार सम्यक के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम का काल भी ग्रहण करना चाहिए। इतनी विशेषता है, इसकी अपेक्षा दर्शन मुनि की क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने तक यह काल होता है। इस प्रकार ओह प्ररूपना समाप्त हुई।
यहाँ पे ये जो अंतर्भूत बताए उसमें कुछ वेरिएशन नहीं हो सकता है ना,
उसका काल तो उतना एक ही होगा।
जो सातवें गुणस्थान वाला जो करेगा और चौथे गुणस्थान वाला सपना करेगा, उसकी अपेक्षा काल में कोई अंतर पड़ेगा?
सपना में उसकी अपेक्षा पड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सपना कार्य तो एक ही होता है। देखो ये हम यह उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का काल देखते हैं जरा। काल प्ररूपना 187 पर है। समय मिथ्या तो समय तो का लेना है ना।
मंदा में यहाँ पे
है। हाँ
तो उत्कृष्ट काल बताया।
वो उत्कृष्ट काल 266 सागर देखा ना, अनुत्कृष्ट काल देखना था। अनुत्कृष्ट 189 पर है। यहाँ लिखा है ना 288 नंबर के पॉइंट पर, दर्शन मुनि का क्षपण करने वाले जीव के द्वारा अपूर्व करण के काल में प्रथम अनुभाग कांडक का घात कर देने पर, क्योंकि जब कांडक घात अपूर्वकरण से ही शुरू होते हैं, ये तो हमेशा उसका नियम है। तब से लेकर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का विनाश होने तक, ये विभक्ति की बात है इसलिए विनाश होने तक बताया, अंतर्मूर्त काल पर्यंत अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म ही रहता है, इसलिए जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। नीचे भी उच्चारण में वही बात फिर दोबारा बताई, इतना ही देखना था। अभी देखो 192 विशेषार्थ है वहां पर। नरक की बात भी हो, ठीक है, वो जब उसकी बात आएगी तब देखेंगे उसको। ये नरक की बात है वहां पर, अभी हम यहाँ आते हैं। 42 पृष्ठ अपना, हमने ओघ से देखा काल आदेश की अपेक्षा सर्वत्र अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। विशेषार्थ, अनुभाग विभक्ति में नरक गति आदि मार्गणाओं में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जो जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है, वह अविकल यहाँ बन जाता है। कैसे उत्कृष्ट? जैसे हमने ओघ में क्या देखा था, उत्कृष्ट मिथ्यात्व की बात करेंगे। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट किसके होता है? जिसने उत्कृष्ट बंद किया है अवली काल के बाद उसको शुरू होता है, तो उसके काल कितना है?
अंतर्मूर्त।
तो अंतर्मूर्त देखा, यानी जघन्य भी और उत्कृष्ट भी उसका अंतर्मूर्त देखा, और अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर्मूर्त देखा था। और उत्कृष्ट कितना देखा था हमने ओघ में? असंख्यात पुद्गल का। अब यहाँ नारकी में इतना तो नहीं ले सकते,
33
कि शुरू में उसने उत्कृष्ट किया, फिर अनुत्कृष्ट हुआ है, फिर जाके अंत में फिर उत्कृष्ट करेगा, तो इन बिटवीन अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल होगा, या अनुत्कृष्ट के साथ ही थ्रू आउट रहे। यहाँ शादी लेना है तो उसको यहाँ शुरू कराना, या अनुत्कृष्ट के साथ ही नरक में जन्मा है और थ्रू आउट अनुत्कृष्ट ही रहा, उत्कृष्ट किया ही नहीं, तो पूरे 33 सागर होगा। इसलिए यहाँ पर उसे अनुभाग विभक्ति के समान जानने की सूचना की है। सम्यक्त्व के बारे में ऐसा ही लेना, वहाँ तो कुछ अनुत्कृष्ट होगा नहीं,
कुछ कम 33 साल
अनुत्कृष्ट किसमें हो सकता है? पहले नरक में कृतकृत्य वेदक के साथ जन्मा है, वो अनुत्कृष्ट के साथ ही आया है वहाँ पर, तो अनुत्कृष्ट के कितने समय हो सकते हैं कम से कम?
अंतर्मुख होंगे, जगन्य का
एक समय होगा कि
अनुत्कृष्ट का जगन्य काल एक समय और मैक्सिमम अंतर्मुख भी,
क्योंकि वो कृतकृत्य अवस्था करते करते यहाँ आया है,
एक आवली प्लस दो
और
समय
आवली प्लस एक समय लेकर ही यहाँ आया है। उसके वहाँ क्षपणा का करते करते यहाँ आया है, जब जन्म लिया है तो आवली प्लस एक समय बाकी था तब नरक में आया है।
एक समय
तो एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ, जगन्य है वो अनुत्कृष्ट ही तो है,
दूसरे समय
में नष्ट हुआ और संक्रामक हो गया, तो एक समय घटित हुआ। अधिक से अधिक जो अंतर्मूर्ति यथायोग्य लेके आया है उसको कहेंगे हम। उसको सम्यक मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट कितने काल तक रहेगा यहाँ पर? सम्यक मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट कितने काल तक रहेगा नरक में? मयंक भाई आप बताएंगे, सम्यक मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट अनुभाग नरक में कितने काल तक रहेगा? रहेगा ही नहीं, क्योंकि अनुत्कृष्ट तो इसमें होता है,
सपना में
होता है, होता है। यहाँ पर थ्रू आउट कैसा रहेगा?
रहेगा तो होगा तो उत्कृष्ट होगा, नहीं तो होगा ही नहीं,
नहीं तो वो नष्ट ही हो जाएगा। समय में इच्छा तो लोगों को सोचने दो। अब समय मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म कम से कम कितने काल तक रहेगा? बोल नरक गति में,
नरक गति में माइनस टाइम उसको
समय। आप क्या कहते हैं? उनकी बात मत सुनो। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्मक हो या संक्रामक हो कितने काल तक? हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट, हाँ, कृतकृत्य वेदक में उसकी सत्ता ही नहीं है। हाँ, क्या कहते हैं? नहीं सोच सकते, ये तैयार है हम उत्तर देने के लिए।
एक समय
बोलो,
एक समय,
एक समय कैसे होगा?
उद्वेलना करते,
उद्वेलना करते आया है।
अंतिम कांडक,
अंतिम कांडक के यहाँ
अंतिम पाली जब भी यहाँ पे आके
गए तब उसका उत्कृष्ट ही था ना।
हाँ।
बाद में भी उत्कृष्ट रहा परंतु संक्रामक रूप, संक्रमण रुक गया है, अवली काल उसका शेष रहेगा। विभक्ति में कैसे देखते हैं हम? उद्वेलना करते करते आया है, एक समय बाकी है उसको लिया था। देखो देखो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ तो दिया है ना अनुभाग विभक्ति के समान ही जान लो ऐसी सूचना की, जरा देख लो कि पुस्तक है आपके पास तो। पांचवी पुस्तक में देख रहे हैं
192 ना,
उसके पहले 189 पे लास्ट लाइन आदेश से नारकियों में मिला क्या?
हाँ।
26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। जघन्य काल जब एक समय होता है तो वो अन्य से उत्कृष्ट के साथ आया हुआ है,
एक समय में अनुत्कृष्ट
अंतर्मूर्त में अनुत्कृष्ट हो ही जाता है, तो उसका एक समय बाकी रहा उत्कृष्ट वाला और उसने अनुत्कृष्ट कर दिया। तो मार्गणा में तो एक समय घटित होता है परंतु ओघ में तो मिनिमम अंतर्मूर्त तो रहेगा ही रहेगा। अनुत्कृष्ट का जगन्य काल एक समय, अब अनुत्कृष्ट का जगन्य काल एक समय कैसे होगा?
अनुत्कृष्ट के साथ आया और एक समय के पश्चात उसका जब
उत्कृष्ट, एक समय में थोड़े उत्कृष्ट का बंद करेगा,
नहीं आगे पूर्व भव में उसने उत्कृष्ट बंद किया था।
हाँ।
अनुत्कृष्ट
आवली के बाद,
आवली के पास होता है ना, तो एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ और पीछे।
हाँ। और दूसरी पद्धति से
मरण
की तरफ ले लेना कि उसने मरण के एक अंतर्मूर्त पहले उसने उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ और एक समय में मर गया, जन्म और मरण दोनों समय। वहां सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33 सागर, क्योंकि शादी मिथ्या दृष्टि आया है तो उत्कृष्ट के साथ आया है, फिर वेदक सम्यक तो प्राप्त किया जब तक रहेगा, बाद में भी उसकी सत्ता बनेगी तो उत्कृष्ट रहेगा ही रहेगा। और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, हमने देखा था ना। सत्कर्म ले आया यहाँ पर उद्वे उसकी कृतकृत्य वेदक वाला आया है, एक समय के लिए रहा या अधिक से अधिक अंतर्मूर्त तक रहेगा। सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का काल मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के काल की तरह है,
एक समय
यानी कितना है,
एक समय होगा
हाँ, कम से कम
अनुत्कृष्ट का है ना,
अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय या उत्कृष्ट का लेना है, अनुत्कृष्ट नहीं उत्कृष्ट का काल
एक समय
मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट के समान है, ऐसा कहा था,
एक समय होगा
तो कम से कम एक समय। और अधिक से अधिक जैसे हमने सम्यक समय देखा पूरे 33 सागर वैसे इसका भी रहेगा उत्कृष्ट का,
उत्कृष्ट का
अनुत्कृष्ट की अभी बात उठाई नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नरक में नहीं होता, मैंने जो प्रश्न पूछा ना उसका कितना काल रहेगा, तो जब रहेगा जिसकी सत्ता है उसके उत्कृष्ट ही है, अनुत्कृष्ट है ही नहीं। अब तीरियन चादी की बात उठाई यहाँ पर, हम विशेषार्थ डायरेक्ट पढ़ लेते अभी 192 पर,
एक ही पेज है बाकी तो पिछले पेज में से।
देखो 26 प्रकृतियों में से किसी का भी उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके मरकर नरक में जन्म लेकर यदि दूसरे समय में ही उसका घात कर देता है, यानी पहले भव में उसने बांध के आया है और दूसरे समय में घात, यहाँ तो विभक्ति की बात है और हम संक्रमण की बात करते हैं, तो संक्रमण पूर्व भव में आवली काल पहले उसने अनुत्कृष्ट बना दिया तो यहाँ भी एक समय की बात हो जाएगा, या नरक में यानी जन्म और मरण दोनों तरफ घटित कर सकते हैं। नरक के अंतिम समय उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके दूसरे समय में अन्य गति में चला जाता है तो नरक में उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय है, ऐसा ही हम यहाँ संक्रमण पर घटित करेंगे। संक्रमण के लिए बंद एक एक आवली पहले बंद करना है और बाद में वहां उत्पन्न कराना। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है क्योंकि अंतर्मूर्त से अधिक काल तक उनका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं ठहरता, कितना भी उत्कृष्ट अनुभाग बंद क्यों न हो अंतर्मूर्त में तो अनुत्कृष्ट होगा ही। तथा कोई नारकी उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके यदि आयु के क्षय हो जाने से दूसरे समय में मर जाता है तो उसके उक्त प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय होता है, संक्रमण के लिए उसको आवली पहले कराना। तथा उत्कृष्ट काल सामान्य से संपूर्ण 33 सागर जानना चाहिए, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल यानी वो अनुत्कृष्ट के साथ ही नरक में आया है और उसने उत्कृष्ट का बंध किया ही नहीं है। तथा विशेष से प्रत्येक नरक की जितनी जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उतना उतना जानना चाहिए। सम्यक प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा से होता है और उत्कृष्ट काल नरक में अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होती है, क्योंकि वो वेदक शादी वाला आएगा मिथ्या दृष्टि भी आएगा तो भी सत्ता है तो उत्कृष्ट है और बाद में सम्यक तो प्राप्त करेगा फिर भी मिथ्यात्व में जाएगा तो उत्कृष्ट ही रहेगा। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का काल जानना चाहिए, यानी वो उद्वेलना की अपेक्षा उसका उत्कृष्ट एक समय घटित हो सकता है। यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व तथा सम्यक प्रकृति का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म दर्शन मोह के क्षपक के अपूर्व करण काल के प्रथम अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर होता है, अतः कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि मरकर नरक में जन्म लेकर यदि दूसरे समय में सम्यक्त्व का क्षपण कर देता है तो सम्यक्त्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय होता है। ये तो स्थिति की अपेक्षा ने सत्ता की अपेक्षा स्थिति ने सत्ता की अपेक्षा बताया, परंतु संक्रमण की अपेक्षा एक समय प्लस आवली काल शेष रहा कृतकृत्य वेदक का तब वो उत्पन्न हुआ, तो एक समय के लिए अनुत्कृष्ट रहा, दूसरे समय में संक्रमण रुक गया और अधिक से अधिक अंतर्मुर्त होगा, क्योंकि नरक में भी कृतकृत्य वेदक का उत्कृष्ट काल अंतर्मुर्त होता है। नरक में भी लगाने की क्या जरूरत है?
क्योंकि जो कृतकृत्य मनुष्य शुरू करता है वो नरक,
देखो कृतकृत्य वेदक में जो मरण होता है तो शुरू शुरू में मरण होता है तो देव में जाता है, फिर और आगे चलकर मरण होता है मनुष्य में जाता है, फिर और आगे चलकर त्रिलंच में जाता है और लास्ट में नरक में जाता है, फिर भी वहाँ अंतर्मूर्त काल शेष रहता है। संक्रमण भी अंतर्मूर्त तक होगा, इसलिए उसका उत्कृष्ट काल भी अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल यहाँ नरक में अंतर्मूर्त होगा और कम से कम काल एक समय होगा। कहाँ गया मेरा? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म केवल मनुष्य गति में ही संभव है, लिखा है ना वहां पर, क्योंकि वो क्षपणा में होता है और उसकी क्षपणा मनुष्यों में ही होती है। सम्यक तो प्रकृति के बारे में तो कृतकृत्य वेदक होकर अन्य गति में जाता है तो उसकी तो बात वहां हो सकती है, पर सम्यक मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट होने का कार्य मनुष्य गति में क्षपणा में ही होगा, क्योंकि कृतकृत्य होने पर ही मरण होता है और सम्यक मिथ्यात्व का क्षपण इससे पहले हो चुका है। एक बार मिथ्यात्व की क्षपणा शुरू हो गई, देखो उसके प्रोसेसेस क्या है, अनंत अनुबंधी की पहले विसंजना होती है, विसंजना बात के तो उसके बाद मरण तो हो सकता है, परंतु जिसने मिथ्यात्व की क्षपणा शुरू की पहले तो अनंत अनुबंधी की विसंजना किया हुआ जीव है, उसने तीन करण परिणाम के द्वारा मिथ्यात्व की क्षपणा पूरी कर दी, फिर एक अंतर्मूर्त चला गया, फिर अंतर्मूर्त में सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा ने संक्रमण कर दिया, फिर अंतर्मूर्त रुक गया और फिर सम्यक मिथ्यात्व के भी जो 8 वर्ष है उसकी क्षपणा करते करते अंतर्मूर्त शेष रहा, तब उसको कहेंगे कृतकृत्य वेदक। उस अवस्था में अब मरण हो सकता है, जब से मिथ्यात्व की क्षपणा शुरू की थी और सम्यक मिथ्यात्व की पूरी होकर आगे अंतर्मूर्त कृतकृत्य वेदक नहीं रह जाता, इतने बीच में काल में मरण होता ही नहीं किसी भी जीव, कृतकृत्य में हो सकता है, होता ही ऐसी भी बात नहीं, जिसकी आयु उतनी है तो उसके उतना होगा। हाँ, उपशम श्रेणी छोड़कर करण परिणाम में मरण नहीं है, उपशम श्रेणी के भी पहले भाग में 8वें के पहले भाग में वहां भी मरण नहीं है शुरुआत में, ये कहां कहां मरण नहीं होता उसके बहुत सारे हमने देखे थे विस्तार,
विश्व का योग
बहुत सारे। अब यहां देखते हम सामान्य तिर्यंचों की बात करें, हम यहीं से पढ़ेंगे विशेषार्थ में सबको ले लेते हैं। सामान्य तिर्यंचों में 26 प्रकृतियों के, जब सामान्य में 26 प्रकृतियों का जघन्य कब होगा? उत्कृष्ट संगी पंचमी जो बंद के बाद होगा। अब यहाँ अनुत्कृष्ट बात करें, सामान्य तिर्यंचों में 26 प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिमाण, ये तिर्यंचों में घटित होता है, ओग में घटित होता है, बाकी मार्गणाओं में उसके अपने अपने उत्कृष्ट स्थिति कहनी पड़ी। क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का घात करके अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के साथ पंचेंद्रियों में उनके योग्य उत्कृष्ट काल तक रहकर, पहले पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट काल बिताया और फिर एकेंद्रियों में जाकर असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक रहकर पीछे पंचेंद्रिय होकर उत्कृष्ट अनुभाग बंधक कर लेने पर उतना काल होता है, ये अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल।
ये पंचेंद्रिय में भी पूर्व कोटि
पूर्व कोटि पृथक हो सकता है कि उसने अनुत्कृष्ट ही रखा, हो सकता है, इसलिए उत्कृष्ट का बंध करने पर उसने कहा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व तो प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग अधिक 3 पल्ले हैं, ऐसा क्यों कहा?
ये तो तिरंज की बात है ना।
हाँ, तिरंजों की,
इसकी सत्ता में पहले तिरंज आयु का नहीं। हाँ, तिरंज
देखो पहले में कैसे ले, उत्कृष्ट काल किसका है? सम्यक तो और सम्यक नित्यत्व का उत्कृष्ट काल। तो उत्कृष्ट काल कब
सत्ता होगी? तभी तो
उत्कृष्ट संक्रमण का लेना है ना। हाँ। उसको ये उत्कृष्ट विभक्ति का लेना है।
हाँ।
तो पहले में पहले सत्ता तैयार हुई, तो सत्ता तैयार हुई यानी वो तो सम्यक दृष्टि हुआ, यानी कोई संगी पंचेंद्रिया उसने सम्यक तो प्राप्त किया,
मिथ्यात्व में गया,
फिर मिथ्यात्व में गया
पीछे।
तो उद्वेलना करते करते पल्ले का असंख्यात भाग बीत गया, उद्वेलना पूरी नहीं हुई
और भोग भूमि में,
उसके पहले भोग भूमि में पहुंच गया और वहाँ सम्यक तो प्राप्त
किया। तो
सम्यक तो ग्रहण किया, समय दृष्टि हुआ, तो तीन पल्ले तक उसकी सत्ता रही। तो पहला पल्ले का असंख्यात भाग और फिर तीन पल्ले, ये उत्कृष्ट की सत्ता रही उसकी। क्योंकि कोई तिर्यंच उपशम सम्यक्तों को ग्रहण करके पुनः मिथ्यात्व में जाकर एकेंद्रियों में कुछ कम पल्ले के असंख्यात भाग काल तक ठहर कर एकेंद्रियों में क्यों भेजा उसको?
क्योंकि मैक्सिमम काल प्राप्त है एक सागर तक की।
क्योंकि पंचेंद्रिय में रहने का काल कितना है उसका? पूर्व कोटि पृथक है और यहाँ तो पल्ले का असंख्यात भाग है, इसलिए पहले बीच में एकेंद्रियों में भेज दिया। पुनः पंचेंद्रिय होकर उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके, उपशम इसलिए किया उसको, यह क्या लिखा?
एक सागर के भीतर जाएगा ना तो उत्कृष्ट पल्ले का
मिथ्यात्व में जाकर तीन पल्ले की स्थिति लेकर भोग भूमि में उत्पन्न हुआ। मैंने पहले पंचेंद्रिय में आया क्योंकि एकेंद्रिय में उसने बहुत घटाई है, पल्ले का असंख्यात भाग लंबा किया है तो इतनी घटाई है कि अभी उसको उपशम सम्यक्त ही प्राप्त कराना था। तो एकेंद्रियों में से डायरेक्ट तो भूख भूमि में नहीं जाएगा, पहले पंचेंद्रिय तिरंज में आया है वो, और वहाँ अभी उसने एकेंद्रिय में घटाया तो यहीं पर उसने प्रथम उपशम सम्यक्त प्राप्त किया। तो फिर सम्यक दृष्टि रखना कि नहीं रखना उसको भूख भूमि के लिए भेजने के लिए? तिरंज सम्यक्त के साथ तिरंज वो भूख भूमि का नहीं बनेगा, न मनुष्य का न
तीरंज,
इसलिए वो फिर मिथ्यात्व में से सम्यक से मिथ्यात्व में गया और तीन पल्ले की भूभूमि में उत्पन्न हुआ और फिर वहाँ वेदक समय दृष्टि हुआ। अब वो समय दृष्टि रहा तो फिर बाद में वो तो देव हो जाएगा, हमें तो तीरंज से लेना देना है। तो उसका पल्ले का असंख्यात भाग प्लस तीन पल्ले, इसलिए लिखते यहाँ पर अतः तिर्यंचों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात् प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग अधिक तीन पल्ले होता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में मूल में कहे अनुसार जानना चाहिए, उन्हीं के समान मनुष्य त्रिक में समझना चाहिए। उसमें भी वो पूर्व कोटि पृथक्त्व लेना, शुरू में एक बार किया मिथ्यात्व में गया फिर दोबारा सम्यक्त प्राप्त किया तो उसकी सत्ता बनी रहे, या एक बार भी सम्यक्त प्राप्त करके पूरा घुमाओ ना उसको, पल्ले का असंख्या तो भाग तो होगा नहीं, उद्वेलना भली चलती रहे उसकी,
फिर पीछे देवी में चला जाएगा,
उत्कृष्ट ही रहेगा ना पूर्व कोटि पृथक्त्व तक, दोबारा सम्यक्त तो प्राप्त होना चाहिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये बात बताना चाहिए। सत्ता के साथ ही आया है, उसने समय तो भी नहीं प्राप्त किया और पूरा मिथ्या दृष्टि रहा है और पूर्व कोटि पृथक्त्व तो पूरा का पूरा उसका उसकी सत्ता के साथ
ले। लास्ट वाला तीन पल्ले वाला भी ले सकते?
हाँ, तीन पल्ले वाला भी ले सकते हैं, उसमें तीन पल्ले वाला पूरा नहीं सकते, वहाँ तो समय तो प्राप्त कराना पड़ेगा क्योंकि पल्ले के असंख्यात भाग में तो उद्वेलना पूरी होती है।
पृथक्त्व कोटि पूर्व प्लस तीन पल्ले,
पूर्व कोटि पृथक्त्व प्लस तीन पल्ले। देवगति में भी पूर्व में कही गई प्रक्रिया के अनुसार काल की योजना कर लेनी चाहिए। अनुदिशादिक में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय न बतलाकर, एक समय अन्यत्र बतलाया है वहाँ उद्वेलना की अपेक्षा बताई, तो यहाँ तो उद्वेलना का सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? सगवी समय दृष्टि है, अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण बताया है, उसका कारण यह है कि वहाँ इन दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना नहीं होती, क्योंकि इनकी उद्वेलना मिथ्यात्व में ही होती है। अब अपने मूल पुस्तक पर आते हैं। यहाँ यही बात बताई जो हमने अनुभाग विभक्ति के बारे में जो कथन देखा है, ऐसा ही यहाँ पर भी घटित होता है। अब आगे बढ़ेंगे। एतो एये जीवेण कालो जघन्यो, आगे एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल कहते हैं। एतो अर्थात उत्कृष्ट काल का निर्देश करने के बाद एक जीव की अपेक्षा जघन्य अनुभाग के संक्रामक के काल का व्याख्यान करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जघन्य काल का अर्थ होता है वो काल में जघन्य नहीं लगाना, जघन्य अनुभाग संक्रम का काल, वो उत्कृष्ट भी होगा और जघन्य भी होगा। अभी तक हमने क्या देखा है, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का जघन्य काल कितना होता है, उत्कृष्ट काल कितना होता है, उत्कृष्ट के साथ अनुत्कृष्ट को भी देख लिया। अब जो जघन्य अनुभाग संक्रम है
उसका
जघन्य में जघन्य काल कितना है, अधिक से अधिक कितना है। जैसे मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग संक्रम कहाँ होता है, किसके होता है, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त, तो कितने काल तक लगातार जघन्य का जघन्य होता रहेगा, उसकी बात यहाँ अभी हमको देखनी है। तो अब यहाँ ऊपर पढ़ेंगे, मिच्छत्तस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो केवचिरम कालादो होदि, मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना काल है, इन्हें लगातार कितना है, कम से कम कितना है, अधिक से अधिक कितना है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य उपकस्येन अंतर्मूर्तम्, जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सर्वप्रथम जघन्य काल का खुलासा करते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हतसमुत्पत्ति कर्म के साथ जघन्य अवस्थान काल अंतर्मूर्त है। हमने पहले देखा था कि सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त उसके जघन्य अनुभाग संक्रम या जघन्य अनुभाग विभक्ति किसके होती है, हतसमुत्पत्ति वाले के होती है। बंध की अपेक्षा इससे भी जघन्य बंध होता है, परंतु सत्ता में इतना पड़ा है तो इससे नीचे सत्ता का अनुभाग नहीं जा सकता, भले बंध कम हो तो भी। तो जघन्य बंध जब तक उससे अधिक बंध नहीं होगा, हतसमुत्पत्ति जितना किया है उससे जब तक अधिक बंध नहीं होता तब तक उतना ही रहेगा। तो हतसमुत्पत्ति जितना या उससे कम बंध लगातार कितने लंबे काल तक हो सकता है, तो अंतर्भूत। इसलिए इसने जघन्य जो बनाया है हतसमुत्पत्ति जितना, वो लगातार अधिक से अधिक लंबे काल तक कितना है, कोई जो क्या इससे नीचे ही लगातार रहेगा तो नहीं, अंतर्मूर्त में उसका अधिक होगा ही होगा। जैसे हमने उत्कृष्ट का देखा था, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं टिक रहे, वैसे जघन्य में जघन्य अनुभाग भी अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं रहेगा। यही कहते हैं कि सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हतसमुत्पत्ति कर्म के साथ जघन्य अवस्थान काल, अवस्थान क्या लेने, उतना का उतना रहने का काल, जघन्य का लगातार काल अंतर्मूर्त है। अब अधिक से अधिक काल तक रहेगा तो कितना रहता है, अब उत्कृष्ट काल का खुलासा करते हैं। कर्म को हतसमुत्पत्ति करके सत्कर्म के नीचे, सत्कर्म ने सत्ता में जो अनुभाग है उससे कम, सर्वोत्कृष्ट अवस्थान काल जघन्य काल की अपेक्षा संख्यात गुणा ग्रहण करना चाहिए। जघन्य भी अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट भी उससे संख्यात गुणा वाला अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि उसके ऊपर बंध की वृद्धि हो जाने के कारण नियम से अजघन्य अनुभाग की उत्पत्ति हो जाती है। अजघन्य कब होगा, अब यहाँ जघन्य और अजघन्य कहा, वहां हम उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कहते थे, अब जो जघन्य नहीं उसको अजघन्य कह देंगे। तो जो अभी हमने हतसमुत्पत्ति का जितना है उससे अधिक बंध होगा तो अजघन्य हो जाएगा उसका। अब पूछते हैं अजघन्य अनुभाग संकामों के विचिरम कालादो होती, जघन्य की बात समझ में आई, जघन्य में जघन्य भी अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट भी उससे संख्यात गुना वाला अंतर्मुख। अब जो जघन्य हुआ ही नहीं है, अजघन्य ही रहा लगातार, तो कम से कम कितने काल तक रहे कि फिर दोबारा जघन्य हो जाए, और लंबे काल तक रहे तो कितने काल तक रहे, उसकी बात यहाँ पूछ रहे हैं कि अजघन्य अनुभव संक्रामक केवल चिरम काला दो दी, उसके अजघन्य अनुभव के संक्रामक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। कहते जघन्य न अंतोमोत्तम, जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जघन्य अनुभाग के संक्रम से अजघन्य के संक्रामक भाव को प्राप्त होकर, यानी उसने हतसमुत्पत्ति कर दी थी, अब थोड़ा अधिक बंद किया है तो आवली के बाद उसका संक्रमण भी अजघन्य चलेगा, तो संक्रामक को होकर पुनः सबसे जघन्य काल के द्वारा, यानी फिर उसने हतसमुत्पत्ति कर दिया।
अच्छा, वापस हतसमुत्पत्ति के केंद्र में रहते वो हो?
अरे बहुत बार होगा ना, अधिक बंद किया तो अजघन्य हुआ, और फिर कम बंद किया तो कम बंद किया तो जो अधिक बांधा था वो फिर हतसमुत्पत्ति हो गया, घात हो गया उसका। लिखा ना कि जघन्य अनुभाग के संक्रम से, 120 नंबर का पॉइंट, अजघन्य संक्रामक भाव को प्राप्त होकर पुनः सबसे जघन्य काल के द्वारा, एक अंतर छोटे अंतर्मूर्त में ही हतसमुत्पत्ति करने पर उक्त काल प्राप्त होता है, यानी दोबारा हतसमुत्पत्ति किया। उपकस से न असंख्य जालूगा, उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि एक बार हतसमुत्पत्ति के योग्य परिणाम से परिणत हुए जीव के शेष परिणामों में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी वो उस परिणाम में आया ही नहीं, सूक्ष्म निगोद द्रव्य पर्याप्तक में था, अन्य पर्याय में चला गया, और ये इतना हतसमुत्पत्ति द्वारा उसका हुआ ही नहीं, तो अधिक से अधिक कितने काल के बाद होगा ही नहीं नियम से, तो असंख्यात लोक। हाँ, ये असंख्यात लोग जो उत्कृष्ट काल है किसका, अजघन्य का, वो जघन्य का अंतर कहेंगे, वो अंतर में फिर दोबारा इसको याद करेंगे, ख्याल में है ना। अजघन्य का जो उत्कृष्ट काल है वो जघन्य का उत्कृष्ट अंतर कहलाएगा। एवं अठ कषायाणम, इसी प्रकार मध्य की आठ कषायों का काल जानना चाहिए, क्योंकि उसका भी जघन्य कहाँ होता है, तो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त में, वो भी हतसमुत्पत्ति के द्वारा। जिस प्रकार मिथ्यात्व के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का काल कहा, उसी प्रकार आठ कषायों के काल का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हतसमुत्पत्ति कर्म के साथ जघन्य स्वामित्व उभयत्र समान है, उभयत्र ने दोनों जगह, इस अपेक्षा से दोनों स्थलों में कोई विशेषता नहीं है। तो हमने अभी मिथ्यात्व और आठ कषाय की बात देखी थी, अब कहते हैं सम्मतस्य जघन्य अनुभाग संकामो केवल चिरम कालादोहो दी, कितने काल तक, अभी वो पृष्ठ पलटने के पहले सोचो आप, कितने काल तक होगा, मंदा बिना आप कहेंगे सम्यक्त्व का जघन्य अनुभाग संक्रामक का काल कितना होगा। हाँ, एक समय कब होगा, एक समय और एक आवली, लगातार इतने काल तक होगा उसका जघन्य जघन्य जघन्य, आप क्या कहते हैं, एक समय उसका काल कितने, लगातार कितने काल तक जघन्य रहा, एक समय के लिए जघन्य रहेगा, बाद में तो
अरे मिट ही जाएगा,
संक्रामक से असंक्रामक हो जाएगा। यह सूत्र सुगम है। जहन्न उपकस्सेन एग चाहिए, एम हुआ है, एग समो, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि काल की अपेक्षा एक समय अधिक आवली से युक्त दर्शन मूल की क्षपणा करने वाले जीव को छोड़कर उससे पूर्व के और आगे के, आग के हुआ, आगे के समयों में सम्यक के जघन्य अनुभाग का संक्रम असंभव है, ऐसा नियम है। कृतकृत्य वेदक में उसने पहले तो उसने उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट किया था, अनुत्कृष्ट में सारा अजगन्य ही ना, उत्कृष्ट भी अजगन्य ही था और अनुत्कृष्ट भी अजगन्य ही है। जघन्य कब होगा? आवली प्लस एक समय है तब, वो एक समय बीत जाएगा तो क्या होगा? आवली प्रमाण रहेगा, संक्रमण रुक जाएगा। तो जघन्य एक समय के लिए ही प्राप्त हुआ उसका, इसलिए कहते पूर्व के और आगे के समयों में उसका जघन्य अनुभाग संक्रम नहीं होगा। अब अजघन्य अनुभाग संक्रम हो केवल चिरम काला तो होगी, अजघन्य कितने काल तक रहता है? अजघन्य ने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट सब अजघन्य कहलाएगा। हमने उत्कृष्ट का काल देखा था,
मिनिमम तो अंतर्मूर्त में सपना कर देगा।
हाँ, तो अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना काल है यह सूत्र सुगम है। जघन्य न अंतर्मूर्तम, जघन्य काल अंतर्मूर्त है। जो सम्यक की सत्ता से रहित मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक के उत्पन्न होने पर उसकी सत्ता प्राप्त करके सम्यक्त्व का अजघन्य अनुभाग संक्रम करने लगता है, पहले उत्कृष्ट करने लगता है, वो उत्कृष्ट है वो सारा अजघन्य ही तो है। तथा जो अतिशीघ्र क्षपणा में जघन्य अनुभाग संक्रम के द्वारा अजघन्य अनुभाग संक्रम को नष्ट कर देता है, यानी पहले उत्कृष्ट था फिर अनुत्कृष्ट हुआ, लगातार अनुत्कृष्ट रहा और अंतिम समय में जघन्य हुआ।
हाँ,
ये उसका संक्रमण का अंतिम समय। तो तब तक वो उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट हो सारा अजघन्य ही कहलाएगा। तो ये कम से कम अंतर्मूर्त में हो सकता है कार्य, इसलिए जघन्य काल अंतर्मूर्त बताया। अब उक्कसेन वे छावट्टी सागर प्रमाणी सादी रे, यानी उत्कृष्ट काल सादिक 266 सागर प्रमाण है। जो हमने उत्कृष्ट अनुभाग का काल देखा था ना सादिक, उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम के काल के समान इसकी प्ररूपणा करनी चाहिए। सादिक 266 सागर प्रमाण कहा है, यानी तीन बार पल्ले का असंख्यात भाग
प्लस
और दो बार छासठ सागर एवं सम्मामिच्छत्तस्य, इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व का काल जानना चाहिए। तो मेरा प्रश्न है, सम्यक्त्व के अजघन्य का काल बड़ा यानी मिनिमम काल, जघन्य काल अंतर्मूर्त है, सम्यक्त्व का अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और सम्यक मिथ्यात्व का भी अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, इन दोनों में किसका काल बड़ा किसका छोटा है? सम्यक्त्व, सम्यक्त्व। सोचने दो, सोचने दो लोगों को प्रश्न फिर दोबारा। हम किसकी बात चल रही? अजघन्य का जघन्य काल, अजघन्य का जघन्य काल ने सम्यक तो प्राप्त किया और अतिशीघ्र क्षपणा कर दी, तो उसका जघन्य काल जो अंतर्मूर्त है
किसका
वो अंतर्मूर्त सम्यक प्रकृति का बड़ा है कि सम्यक मिथ्यात्व का बड़ा है अंतर्मूर्त वो है? बोलो। नहीं, नहीं कह सकते। अरविंद भाई, सम्यक मिथ्यात्व का कम, उसकी सपना पहले पूरी होती है ना, वो पहले जघन्य हो जाता है,
सम्यक तो काल बड़ा है,
तो बाद में जघन्य हो जाती है, आगे अंतर्मूर्त चलकर वो जघन्य हो जाती है, पहले इसकी सपना रुक जाती है, निमिट जाती
पहले
है,
पहले ये सत्ता में से नष्ट होगा पीछे सम्यक,
फिर सम्यक, तो उसका थोड़ा तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व का काल जानना चाहिए। जिस प्रकार सम्यक्त्व के जघन्य और अजघन्य अनुभाग के संक्रामक के काल का कथन किया है, उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व का भी करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब यहाँ संबंधी विशेषता का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इस संबंधी चाहिए, तो आगे का सूत्र कहते नवरी जहन अनुभाग संकामो के चिरम काला दो होदी
सम्यक मिथ्यात्व के बारे में
सम्यक मिथ्यात्व के बारे में पूछ रहे हैं, किंतु इतनी विशेषता है इसके जघन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य उपकसेन अंतोमोत्तम, जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ऐसा क्यों? सम्यक्त्व का जघन्य तो एक समय के लिए और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य तो अंतर्मूर्त के लिए, ये पार्शियलिटी कैसी? इसका जघन्य लगातार अंतर्मूर्त तक चलता रहे और सम्यक प्रकृति का जघन्य एक ही समय के लिए चलता है। हाँ वो सही है, तो सम्यक मिथ्यात्व तो में ऐसा क्यों नहीं दिया? देखो सम्यक मिथ्यात्व का जब अनुभाग कम हो रहा है उसका जघन्य कब है? अंतिम कांडक घात में सर्वत्र है, पूरे अंतर्मूर्त तक उतना का उतना है, और फाली अंतिम गिर गई तो एकदम वो असंक्रामक हो गया, असंक्रामक ही हो गया। तो उसकी जो अंतिम फाली चल रही है उसमें जो अंतिम स्पर्धक है वो उतना का उतना रहेगा, स्थिति के समान उसमें एक एक समय घटने की कोई बात नहीं है। तो पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, उसमें अनुभाग उतना का उतना रहेगा और पूरा कांड घात होने पर अनुभाग एक साथ घट जाएगा, तो वो थ्रू आउट उसका जघन्य अनुभाग है वहाँ पर एक अंतर्मूर्त के लिए। ऐसा ही जघन्य अंतर्मूर्त तक लगातार और कौन कौन सी प्रकृतियों में देखा था हमने?
मैं बता दू
या बताओ?
आठ कषाय, उसमें भी कांडक घात होता है।
आठ कषायों में ऐसा नहीं, उसे तो जघन्य जो अंतर्मूर्त बताया है वो तो सूक्ष्म निगोल में बताया।
अच्छा, नपुसक वेद, स्त्री वेद,
नपुसक वेद, स्त्री वेद और छह नौकषाय।
हाँ, छह नौकषाय,
इसमें अंतिम कांडक वो जघन्य लगातार होता है। संज्वलन क्रोध मान माया और लोभ में एक समय का,
एक समय का,
पुरुष वेद में भी एक समय का, क्योंकि वहाँ नया बंधा हुआ एक समय के लिए रहता है उसकी बात की, और यहाँ पूरा कांडक उसका जघन्य रूप से रहता है
अंतर्मूर्त
तक। यहाँ उसका कारण बताते हैं, क्योंकि 130 नंबर का पॉइंट, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जीव के अंतिम अनुभाग कांडक में अंतर्मूर्त काल पाया जाता है। यहाँ दर्शन मुनि के क्षपणा वाले कह दिया है, परंतु यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व का जब अंतिम कांडक लेना है, क्योंकि पहले मिथ्यात्व का कांडक हो चुका है, अभी सम्यक मिथ्यात्व का चल रहा है, तो यहाँ लिखा है ना, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जीव के सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम अनुभाग कांडक में अंतर्मूर्त, ये अंतमूर्त हुआ, अंतर्मूर्त है। पूछते हैं, अनंतानुबंधिनम जहन्न अनुभाग संकामो के विचिरम कालादो होदी, अनंतानुबंधियों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। इसका स्वामी कौन है? प्रेरणा बेन, याद है अनंतानुबंधी का जघन्य संक्रामक कौन है? संयोजना करने वाला, आवली के पश्चात संक्रामक है ना। विभक्ति लेनी है अनुभाग की तो पहले समय में, संक्रामक लेना है तो आवली के पश्चात। तो कहते हैं उसका एक ही समय है, क्योंकि दूसरे समय से अधिक बंद होगा उसका, क्योंकि विसंयोजना पूर्वक संयुक्त तो होने के प्रथम समय में जो जघन्य अनुभाग बंद होता है उसके संक्रम में जघन्यपना पाया जाता है, यानी उसका संक्रमण भी जघन्य होता है। अजघन्य अनुभाग संक्रामय से तीन भंगा, उनके अजघन्य अनुभाग के संक्रामक के तीन भंगे। किसकी बात चल रही है? अनंतानुबंधी का अजघन्य संक्रामक, जो जघन्य नहीं है वो सारे अजघन्य कहेंगे, तो उसके तीन भंगे ने कैसे? देखो, यथा अनादि अनंत, क्यों अनादि अनंत?
अभव्यो को जिसने विषयोजना की नहीं है,
उसने विषयोजना ही नहीं की है, उसका तो अनादि अनंत, अनादि शांत
जो सत्ता में से नष्ट हो गया अनादि,
हाँ, उसके नष्ट विसर्जना करके वो तो क्षपणा ही कर दी उसने, यानी वो तो ऊपर ही चल गया, तो उसका अनादि शांत हो गया। और साधि शांत
जो संयोजना की,
संयोजना के दूसरे समय में अजगण्य हुआ है,
और बाकी
और शांत ने फिर उसने विसर्जना कर दी, तो साधि शांत। उनमें से मूल के दो भंग सुगम है, इसलिए तृतीय भंगगत विशेषता का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी वो जो साधि शांत कहा है, अजगण्य के लिए आदि है ना, विसंयोजना के दूसरे समय में उसने अजगण्य बंध किया और उसके आवली के बाद अजगण्य संक्रामक हुआ। अब वो उसमें जगण्य काल कितना होगा, अजगण्य का जगण्य काल कितना होगा, अंतर्मूर्त, क्यों अंतर्मूर्त में वो विसंयोजना करके नष्ट कर देगा,
संक्रमण ही बंद हो गया,
फिर दोबारा उसके
नहीं
संयोजना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता में था अजगण्य रूप से, वो नष्ट हो गया। अंतर्मूर्त में कोई दोबारा विसंयोजना की तो जगण्य काल उसका अंतर्मूर्त हुआ, अब उत्कृष्ट काल उसको रखना है, अधिक से अधिक लंबा काल, अजगण्य का लंबा काल। अनंत काल कैसे, एक इंद्रिय में अनंत काल कितना बिताएगा, कितना होगा, असंख्यात पुद्गल परावर्तन होगा। अब ये विसंयोजना करके लौटा हुआ है, ख्याल में आई ना बात। हाँ देखो, अभी हमने कहाँ पढ़ा है, हम सोचेंगे अभी यहाँ क्या लिखते देखेंगे। तो तीन भंग बताए, तथ जो सो साधियो सपज्ज वसीदो सो जघन्य न अंतो मूर्तम। उनमें से जो साधि शांत भंग है उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यथा जघन्य से अजघन्य को भाव को प्राप्त होकर, ये दूसरे समय में अजघन्य हुआ तो आवली के पश्चात वो भी संक्रामक अजघन्य हुआ, फिर जो अतिशीघ्र विसंयोजना के द्वारा परिणत हुआ है उसके प्रकृत जगुण्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त हुआ, ये बात ख्याल में आई। संयोजना करते ही उसका पहले समय में जगण्य हुआ, अभी हम विभक्ति की बात करेंगे, दूसरे समय से अजगण्य बंध शुरू हुआ, अब वो जो अजगण्य रहा एक अंतर्मूर्त में, फिर उसने सम्यक तो प्राप्त किया तो भी अजगण्य रहा, विसंयोजना की तो भी अजगण्य ही रहा थ्रू आउट, परंतु सत्ता ही नष्ट हुई, तो अजगण्य कितने काल तक रहा, तो अंतर्मूर्त तक रहा। अजगण्य की स्टार्टिंग कब हुई है, संयोजना होने पर दूसरे समय में विभक्ति के लिए, और संक्रमण के लिए और एक काल पश्चात, और फिर उसका संक्रमण कब तक रहे चल गया, वो अंतिम कांडक घात होते तक, अंतिम कांडक घात हुआ
संक्रमण,
तो संक्रमण रुक गया, सत्ता में ही नष्ट हो गया, तो वो जगण्य काल उसका साधी और शांत भंग के लिए जगण्य काल अंतर्मूर्त हुआ, ये तो जगण्य की बात की। अब आगे उपकस्य न वड्ड पोगल पर्यटम, उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, अन्य कर्मों में जो हम देखते थे वैसे यहाँ एक इंद्रियों में भेजकर असंख्यात पुद्गल परावर्तन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक बार सम्यक तो प्राप्त करके विसंयोजना करके आया हुआ जीव है, अब उसका उत्कृष्ट काल रहने का संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन, इसलिए लिखते हैं उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल के प्रथम समय में प्रथम सम्यक्त को ग्रहण कर, यानी प्रथम उपशम को ग्रहण किया पहला समय में, और उपशम सम्यक्त के काल के भीतर ही विसंयोजना कर फिर भी अतिशीघ्र संयुक्त होकर, जिसने अनंतानुबंधियों के अजगण्य अनुभाग संक्रम का प्रारंभ किया, ये अर्लीएस्ट उसको किया, क्योंकि बीच वाला काल हमको बढ़ाना था, पुनः उसके साथ कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण कर, वो भ्र नहीं दिख रहा है, म्र दिख रहा है, परिभ्रमण कर उक्त काल के अंत में संसार में अंतर्मूर्त शेष रहने पर जो पुनः विसंयोजना से परिणत हुआ है, नष्ट कर दिया ना उसने सत्व, तो अजगन्य समाप्त हुआ, उसके उतना काल उपलब्ध होता है, यानी कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है।
यहाँ पे ये जीव को सासादन में भेजेंगे ना विसंयोजना करके,
विसंयोजना करके सासादन में उसका जगन्य बंद होगा कि मिथ्या तो में जगन्य बंद होगा?
नहीं, जगन्य का तो बात ही नहीं है, विसंयोजना कर दिए सासादन में गए परिणाम वर्ष,
अजगन्य कराना है उसको सासादन में, अति शीघ्र भेजना है तो सासादन में
लंबा काल वो हो जाएगा,
लंबा हो जाएगा उसका। यही रुकते अभी हम, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कानो सोवाणी मस्तक नमो
नम ओरियंताणम नम सिद्धाणम नम आर्याणम नम वज्राणम नम लोहे सभ्यसावणम नम ओरियंताणम नम सिद्धाणम नम आर्याणम नम वज्राणम नम लोहे सभ्यसावणम नम ओरियंताणम नम सिद्धाणम नम आर्याणम नम